Blessed Savior, Om Namah Sitthavya, Om Namah Sitthavya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Savasahuram, Kammatta Janiya Veyana, Uvahi Samuttinnaye Jinenamiyum, Veyana Mahahiyaram, Vivihahiyaram Paruvemu. यह श्री भीमसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें अभी हम वेदना काल विधान अनुयोग द्वार देख रहे हैं। अब हम पृष्ठ संख्या 100 पर आए, 100। अभी यहाँ बात ये चल रही है कि उत्कृष्ट काल किसके होता है, उसकी बात देखते देखते अनुत्कृष्ट की बात चल रही थी। तो हमने उत्कृष्ट जो 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति वाली जो बात देखी थी, वो किसके होते वो देखी थी। उसके बाद उसमें हाँ चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि ऐसा लिए थे ना, वो सब पर्याप्त उनसे पर्याप्त हुआ ऐसा ऐसा वो सारे हमने देखे थे। उसमें ज्ञान उपयोग से है, जागृत अवस्था वाला है, संकलेश परिणाम वाला है, हाँ अति उत्कृष्ट है, मध्यम संकलेश, इस तरह से हमने देखे थे। और उसके बाद अनुत्कृष्ट वेदना की बात चल रही थी। अनुत्कृष्ट में पंचेंद्रिय में जितने पॉसिबल है उतने तो अनुत्कृष्ट बता ही दिए। हाँ उसको भी ले रहे मैं, देखो आपके कहने 92 पेज पर जो लिखा है उस वहाँ से हम देखेंगे। हाँ हाँ देखो, अभी हम अनुत्कृष्टों के स्थान देख रहे हैं। उत्कृष्ट स्थान मान लिया है 240, 30 कोड़ाकोड़ी सागर के बदले यहाँ संदृष्टि में 240 लिया है। अभी पहले हम किसको क्या लिया है उसको देखते हैं। 30 कोड़ाकोड़ी सागर की आबादा होती है 3000 वर्ष, उसके बदले यहाँ आबादा लिया 8 समय। आबादा कांडक किसको कहते हैं, तो देखिए कोई विशिष्ट जो समय है आबादा के, अलग अलग स्थिति के लिए उतनी ही आबादा होती है, स्थितियों की विशिष्ट रेंज के लिए आबादा हर समय नहीं घटती, एक एक समय स्थिति घटते हुए आबादा एक एक समय से नहीं घटती है। तो 30 कोड़ाकोड़ी से नीचे उतर कर आए तो वहाँ तक सारे ही स्थितियों के लिए आबादा तो उतनी ही रहेगी 3000। अब अपनी संदृष्टि में 240 के लिए भी आबादा 8 समय है, 239 के लिए भी 8 समय है, 238 के लिए भी 8 समय है, तो ऐसे कहाँ तक 8 समय है, तो 210 तक, यानी 30 की आबादा है, आबादा कांडक 30 है, तो 240 से लेकर 210 तक आबादा वही की वही यानी 8 समय है। अब जब आबादा 7 समय होगी तो यहाँ 209 वाला शुरू होगा, आगे के जो 30 है, और आगे की जो है, आगे के जो 30 है तो वहां 7 समय होगा आबादा, आगे की 30 यानी 30 और 30 60, तो 240 में से 60 कम कर दो तो 180 हो गए, 180 तक तो 7 समय वाली ही आबादा होगी। हाँ तो 6 समय हो जाएगी, 179 होगी तब 6 समय होगी। तो ये यहाँ एक एक समय घटते हुए हम देख रहे हैं, अलग अलग बंद स्थिति बंद अलग अलग देख रहे हैं। तो ये आबादा कांडक नया शुरू होता तो यहाँ विशिष्ट ये स्थिति का प्रमाण हमें है, तो एक एक समय से कम वाले सारे ही अनुत्कृष्टों के भेद है, परंतु उसको समझाने के लिए हम मेजर मेजर ले लेंगे। उसमें से हर एक आबादा कांडक समाप्त होता वहां पर स्थिति कितनी है, तो उसको अनुत्कृष्ट का एक विवक्षित भेद है ऐसा कहेंगे। दो आबाधा कांडक पूरे होते तो वहाँ वाला कोई स्थिति का अलग भेद है, जैसे हमने टॉप मोस्ट 240 देखा था और अनुत्कृष्टों में टॉप मोस्ट 239 देखा था। एक आबाधा कांडक पूरा होता है तो 210 लिया, उसके बाद दो कांडक पूरे होते तो 180 है, इसी तरह से आगे आगे चले जाएंगे। एक एक कांडक पूर्ण होता है। ओरिजिनल आबाधा कांडक कितना है आपको चाहिए? तीन हजार वर्ष में एक समय कम, यानी मिनिमम आबादा कितनी है ऐसा आपको चाहिए कि अब कांडक कितना बड़ा है? आप जरा मुझे वो संदृष्टि देना या अपना सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीछे है ब्राउन पुस्तक, और तब तक मुझे वो सामने वाली कर्मकांड की संदृष्टि देना, राइट साइड में वो वर्टिकल रखा है ना वो बुक, हाँ, और पीछे वो ब्राउन बुक है नीचे के भाग में रखा हुआ। हाँ, 3000 वर्ष का तृतीय भाग नहीं, द्वितीय 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 भाग का पूर्वार्ध पीछे ब्राउन है। हाँ, तो आबाधा कांडक कितना होता है तो उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबाधा। जैसे अभी आपने देखा ना 240 को आपने 8 से भाग दिया, वैसे उत्कृष्ट 3000 वर्ष से 30 कोड़ाकुड़ी सागर को भाग देना। एक कांडक, एक आबाधा कांडक, हाँ उतनी सीट हाँ, वहाँ तक के लिए 3000 वर्ष ही है। हर एक के लिए अपनी अपनी अलग है। एक केंद्रियों के लिए आबाधा कांडक का प्रमाण, द्विन्द्रिय के लिए आबाधा कांडक का, उसकी अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय उसका आबाधा, इस तरह से वहाँ लिया है। और पंचेंद्रिय की कहाँ लिखा है? हाँ, 30 कोड़ाकोड़ी सागर है। अब उसमें भी ज्ञान आवरण वगैरह की अलग अलग है ना। उत्कृष्ट स्थिति को डिवाइड करना है। ये नहीं, वो पूरा जो स्थितियों का लाट पूरा हुआ है इतना समझना। कल ये बात हुई थी, उसको निषेक कहा यहाँ पर, उसको यहाँ निषेक कह दिया। हाँ, ये हम तो एक कर्म का निषेक खिर गए ऐसा समझते, वैसा नहीं है। हाँ, वो पूरी स्थितियों की रेंज अभी वो कम हो गई, अभी आगे वाली रेंज चलेगी, यानी 240 से लेकर 200 तक, 210 तक निकल गए। हाँ, अभी 209 से आगे नीचे देखेंगे। यानी ऐसे ये निरंतर एक एक समय कम वाले ये अनुत्कृष्ट के भेद देखेंगे कहाँ तक, तो ध्रुव स्थिति तक। ध्रुव स्थिति किसको कहा, तो मिनिमम पॉसिबल जो बंद है वहां पर संगी पंचेंद्रिय। अब यहाँ तो मिथ्या दृष्टि लेना, अरविंद भाई मिथ्या दृष्टि लेना, ये जो संकलेश परिणाम वाला लिया ना, क्या शब्द आया था, सर्व विशुद्ध संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति। सर्व विशुद्ध में एक इंद्रियों में भी ये शब्द आया है, सर्व विशुद्ध ध्रुव, सर्व विशुद्ध एक इंद्रिय ऐसा, क्योंकि हम इसके नीचे एक इंद्रियों के देख रहे हैं और एक इंद्रियों के जघन्य के नीचे जाके हम फिर क्षपक श्रेणी के देखने वाले हैं। अब यहां तो एक एक समय कम स्थिति वाले अलग अलग भेद देखे हमने, स्थिति बंध के अलग अलग भेद देख रहे हैं। यहां पर पंचेंद्रियों के ध्रुव स्थिति तक आने के बाद एक इंद्रिय में चले गए, क्योंकि एक इंद्रिय के साथ कंपेयर कर रहे, बीच वालों को छोड़ दिया है, द्विंद्रिय तीनियों दिखा, क्योंकि ओवरलैप है ना, वो तो पुनरुक्त स्थान होने वाले है जो पंचेंद्रियों के जघन्य जघन्य है, तो ऐसा कोई एक इंद्रिय है कि, तो ध्रुव स्थिति तक देखा ना हमने जघन्य इतना बन सकता है, तो कोई एक इंद्रिय में गया है, उसकी स्थिति अभी त्रस में से गया है तो अंदर सत्ता में ज्यादा स्थिति है, अभी बंद की अपेक्षा नहीं लेना है, अभी स्थिति की अपेक्षा लेना है, तो वहां ज्यादा अधिक स्थिति वाला तो वहां गया है, तो कितनी कितनी अधिक स्थिति वाला जा सकता है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमने मान लिया है 31, ये तो ध्रुव स्थिति का प्रमाण बताया 31, तो उससे अधिक स्थिति वाला कोई जीव इसमें चला जाएगा एक इंद्रिय में, तो उसमें उन्होंने अलग अलग वेरिएशंस बताए थे, वो वेरिएशंस हमने यहां देखे थे। देखो कि स्थिति कांडक का प्रमाण, देखो एक इंद्रिय में जाने के बाद स्थिति कांडक होते हैं, स्थिति कांडकों का घात होता है, तो उसमें उसको घात होने के लिए जितना काल लगता है अंतर्मुख छोटा बड़ा जो कुछ, तो उसको कहते हैं उत्कीर्ण काल। तो जब तक उत्कीर्ण काल चल रहा है उसमें एक एक निषेक खिर रहा है, और स्थिति कांडक का क्या हो रहा है उतने ही काल में, तो जितने निषेकों का घात होने वाला है उसमें से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आ रहे हैं। उत्कीर्ण काल के अंत समय में क्या होगा, अंतिम फाली रहेगी, वह नीचे आएगी, और उसके पश्चात वाले समय में उत्कीर्ण काल के जितने समय उतने तो नष्ट हो ही चुके एक एक समय खिर कर, और जो कांडक है उतना भी नष्ट हो गया, यानी उत्कीर्ण काल प्लस स्थिति कांडक इन दोनों का मिलकर जो प्रोपोर्शन है उतना एक साथ कट हो जाता है, उस एक ही जीव के देखेंगे तो बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है, परंतु अन्य कोई जीव जो शुरू में अधिक स्थिति वाला वहां आया था तो वहां के गैप ऐसे पुनरुक्त स्थान उसमें बताए, जब एक एक समय घटता है तो वैसे स्थान वहां पंचेंद्रिय में भी थे, क्योंकि ध्रुव स्थिति के अभी ऊपर के स्थान है, तो एक इंद्रिय और पंचेंद्रियों में दोनों है, तो उसको पुनरुक्त कहा। जब एक साथ कांडक भी खलास होता है और उत्कीर्ण काल भी समाप्त होता है तो एकदम ड्रॉप हो जाता है, तो उसको कहते हैं अपुनरुक्त स्थान। ऐसे एक कांडक के बाद, दो कांडक के बाद, एक एक समय जब घटेगा तो सारे पुनरुक्त स्थान होते हैं, और जब एक पूरा कांडक का अंतिम फाली गिर जाती है तो अपुनरुक्त स्थान होते हैं। तो इस तरह से एक एक समय अनुत्कृष्ट स्थान नीचे नीचे आ रहे हैं, ये घटित कर रहे कि एक एक समय वाला कैसे स्थिति कम वाली वहां पोजीशन बन सकती है, अधिक बंधन नहीं, स्थिति की अपेक्षा एक इंद्रिय में आने के बाद स्थिति सत्व की अपेक्षा वहां देखना, क्योंकि हमको काल देखना है, वो यहां सत्व की अपेक्षा काल देख रहे हैं हम, क्या नहीं? तो एक इंद्रिय में एक कांडक घात होने के बाद, दो कांडक घात होने के बाद, और उसमें भी अलग अलग जीव लिए, जैसे हमने मान लिए कोई 34 समय वाली स्थिति लेकर एक इंद्रिय में आया है, ध्रुव स्थिति तो 31 थी, तो उसमें चार समय का उत्कीर्ण काल है और चार समय ही उसका स्थिति कांडक घात का भी प्रमाण आयाम है, तो पहले तीन समय तक क्या हुआ, उत्कीर्ण एक एक हो गया, एक एक निषेक कम हुआ, यानी एक एक स्थिति एक एक समय से घटी, और जब कांडक घात पूरा हुआ तो वो चार समय और घटे, हाँ, तो ये आठ समय एकदम नीचे आ गए, तो ये अपुनरुक्त स्थान हो जाते हैं। वैसे हमने 34 समय पर घटाया, 35 समय पर घटाया, 36 समय पर घटाया, और उसमें भी एक कांडक होने के बाद क्या पोजीशन है, दो कांडक होने के बाद क्या पोजीशन है, इसकी बात हमने कल विस्तार से एक एक की बात की। जब उत्कीर्ण काल चल रहा है तो एक एक समय घटता है, जब स्थिति कांडक घात होता है तो एकदम से वो पूरा कांडक नष्ट हो जाता है, तो स्टीप एकदम ड्रॉप हो जाता है ना। बीच वाले स्थान अन्य जीव के हो सकते हैं, परंतु ये नया नया जो स्थान है वो अपुनरुक्त अपुनरुक्त होता है, जब स्थिति कांडक घात एक होता है तभी। हाँ, एक इंद्रियों में स्थिति कांडक घात होते हैं, क्योंकि त्रस में से आया है तो वहां बंध तो छोटा है बहुत, एक सागर तो मिथ्यात्व के लिए। हाँ, और ज्ञानावरण के लिए तीन सप्तमांश सागर होगा, उत्कृष्ट स्थिति बंध, वो भी उत्कृष्ट, और हर एक को तो उत्कृष्ट नहीं होगा, यथा योग्य होगा, तो तब तक उसके वो स्थिति कांडक घात होगी। तो यहां हम आए थे 100 पेज पर, ये हमने बीच में ही रुके थे हम। हाँ देखो, यहां से ऊपर की छठी लाइन इस प्रकार, वहां देखना, इस प्रकार इस क्रम से स्थिति कांडक प्रमाण व एक समय कम उत्कीर्ण काल से अधिक अपुनरुक्त स्थिति सत्व स्थानों को, ये स्थिति सत्व स्थान ने सत्ता वाले स्थिति लिया है, उसके स्थान अलग अलग लिए, तो अपुनरुक्त कैसे कैसे हो गए, जब जब एक एक स्थिति कांडक घात होता है क्रम से, तभी अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न कराकर फिर पश्चात पहले स्थापित जीव की अपेक्षा अपुनरुक्त स्थानों की उत्पत्ति कही जाती है यथा। अब ये पहले वाले जीव को अपुनरुक्त कैसे हो गए उसको बताते हैं। उक्त विवक्षित पूर्व जीव के द्वारा अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि अंतिम फाली के विघटित होने पर पहले के स्थिति सत कर्म से समानता को प्राप्त हुआ स्थिति सत कर्म अधस्थिति के गलने से एक समय कम देखा जाता है। यानी दो अलग अलग जीव लिए, पहले तो उसका स्थिति कांडक पूरा होने पर किसी अन्य जीव के समान था, परंतु वह अंतिम समय उसका गल गया, उसको उत्कीर्ण काल का, तो वो नीचे एक समय नीचे आ गए। इस प्रकार द्वितीय परिपाटी समाप्त हुई। ये परिपाटी यानी वो कितने कांडक घात होते, द्वितीय स्थिति कांडक की बात देखी थी। देखो 99 पृष्ठ पर नीचे लिखा था, चतुर्थ जीव के द्वारा द्वितीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर, ये चार अलग अलग जीव लिए हैं और उसको पहले जीव के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब तृतीय परिपाटी यहां बताते हैं, यानी कोई अन्य जीव वो पहले के समान हो उसकी कंपेरिजन करेंगे। फिर देखो, यथा इन एक अधिक स्थिति कांडक प्रमाण जीवों में से ये अलग कितने जीवों की कंपेरिजन हुई। स्थिति कांडक का जो आयाम है, जितने निषेक समय हो ना एक साथ, वो उत्कीर्ण काल में ड्रॉप होते हैं, कम हो जाते हैं, घात होता है, वो ये जितने समय उतने जीव लिए अलग अलग, एक एक समय से अधिक स्थिति वाले अलग अलग जीवों की संख्या है स्थिति कांडक प्रमाण में एक अधिक, पांच जीव लिए अलग अलग है ना। तो एक अधिक स्थिति कांडक प्रमाण जीवों में से सर्व जघन्य स्थिति चाहिए, स्थिर हुआ है स्थिति सत्कर्म, क्या कहते हैं, इन एक अधिक स्थिति कांडक प्रमाण जीवों में से सर्व जघन्य स्थिति सत्कर्मिक जीव के द्वारा, कौन सा जीव लिया, पांच जीवों में से सबसे जघन्य जिसकी सत्ता में स्थिति है ऐसा जीव लिया, उस जीव के द्वारा तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर, अब तृतीय स्थिति कांडक की बात चल रही है, तो उसके विघटित हो जाते पर, एक फाली दो फाली तीन फाली ऐसे होगी ना, उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, तो उसका एक समय कम हुआ स्थिति में से, नीचे से उदय होकर निकल गया, क्योंकि उत्कीर्ण काल में स्थिति कांडक घात यानी उतने स्थिति वाले निषेकों में से एक एक लॉट परमाणु का नीचे आता है, एक फाली दो फाली, परंतु सत्ता तो स्थिति तो उतनी ही बनी रहती है। स्थिति कब कम होगी? अंतिम फाली गिरने के बाद। तब तक क्या होगा? उत्कीर्ण काल चला जाता है, एक दो तीन चार पांच समय, तो उसमें एक एक निषेक उदय होकर गल जाता है। तो कहेंगे पंचेंद्रियों में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसमें तो बंध भी हो रहा है ना बहुत, यहाँ बंध बहुत छोटा है, इसलिए जो सत्ता में जो स्थिति उससे अधिक बंध होगा तो ही उसका उत्कर्षण वगैरह होगा या स्थिति बढ़ सकेगी, परंतु ऐसा है नहीं है। तो यहाँ उत्कीर्ण काल का एक समय गया तो स्थिति एक समय कम हो गई। यह पुनरुक्त स्थान है, ये जघन्य में जघन्य जीव लिया था, अन्य जीवों में उत्कीर्ण काल का एक समय घटाने पर भी पुनरुक्त स्थान ही कहते हैं। ये जघन्य स्थिति वाला लिया है तो उससे नीचे एक समय गला तो भी वो अपुनरुक्त ही होगा, क्योंकि अधस्थिति के गलने से, अधस्थिति यानी नीचे का निषेक, पहला, क्योंकि उदय वाला, उदय रूप जो निषेक है, अधस्थिति स्थिति यानी निषेक, नीचे का निषेक, तो अधस्थिति के गलने से पूर्वोक्त स्थिति की अपेक्षा यह स्थिति एक समय कम देखी जाती है। एक एक उदय रूप होकर गल गया तो स्थिति एक समय से घट गई। अंतिम फाली को छोड़ शेष फालियों से पुनरुक्त स्थान नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वह जघन्य वाला जीव लिया ना, तो एक एक समय घटने पर उसके अपुनरुक्त अपुनरुक्त ही होते हैं, क्योंकि उनमें स्थितियों के आयाम का घात संभव नहीं है। यानी एक एक स्थिति घट जाएगी, पूरा आयाम एक साथ घट नहीं गिरे अभी, क्योंकि अंतिम फाली गिरने पर बहुत बड़ा आयाम कट हो जाता है, तब तक एक 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 स्थिति का एक एक निषेक गल जाता है। पश्चात उसी जीव के द्वारा द्वितीय फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, जघन्य में शुरू किया था इसलिए उसके नीचे एक समय भी कम हुआ तो ही भी अपुनरुक्त ही स्थान बताते हैं। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण ही अपुनरुक्त स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। हर समय में एक एक अपुनरुक्त स्थान हो रहा है। हाँ, अपुनरुक्त उसको बताएंगे ना अभी, पर वहां बीच में गैप होगा। ये कंटिन्यूअस एक एक समय वाले अपुनरुक्त है। हाँ, अभी उसमें थोड़ी गैप पड़ के वो अपुनरुक्त होगा, परंतु वो गैप, हाँ हाँ। अब उत्कीर्ण काल के अंतिम समय में स्थिति कांडक की अंतिम फाली को उसी प्रकार स्थापित करके फिर इन विवक्षित जीवों में से सर्वोत्कृष्ट स्थिति कर्मिक जीव के द्वारा, अभी वो ये जघन्य वाला ऐसा ही रखा है, अब उसमें से जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाला था, सर्वोत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मिक जीव के द्वारा तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का समय गलता है। यह पुनरुक्त स्थान है। हमने देखा ना, पांच अलग अलग जीव लिए थे, उसमें सबसे जघन्य वाला लिया था। जघन्य वाले ने एक समय कम किया उत्कीर्ण काल का तो उसका अपुनरुक्त हुआ, पर उत्कृष्ट वाले ने एक समय कम किया तो उसके ये सारे बीच वाले वो सारे पुनरुक्त ही स्थान हो गए, तो उसका ये पुनरुक्त हुआ। द्वितीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल के बराबर पुनरुक्त स्थान जाते हैं। पश्चात तृतीय स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि अंतिम फाली के विघटित होने पर शेष स्थिति सत्कर्म यानी स्थिति कांडक उसमें से बात करना, पहले का जितना सत्कर्म था, स्थिति सत्कर्म यानी सत्ता वाली स्थिति, उसमें से एक कांडक एकदम कट हो गया, तो शेष स्थिति सत्कर्म पूर्व के स्थिति कर्म से समानता को प्राप्त स्थिति सत्कर्म अधस्थिति के गलने से एक समय कम देखा जाता है। हमने वो देखा था ना, दोनों में एक तो जघन्य वाला था, एक उत्कृष्ट वाला था। उत्कृष्ट वाले का एक गया, फिर दो गया, तीन गया, और वो अंतिम समय में उसके समान आया था, परंतु अभी उत्कीर्ण काल का एक समय जाने के लिए कारण वो और एक समय नीचे आ गया, पहले वाले से एक समय उसका नीचे आ गया, तब उसको अपुनरुक्त कहेंगे। एक समय कम देखा जाता है। तत्पश्चात इससे दूसरे जीव के द्वारा एक जघन्य देखा था, एक उत्कृष्ट देखा था। तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। देखो पहले हमने क्या देखा था, एक जघन्य और एक उत्कृष्ट, उसमें पांच का पांच थे ना, वो अलग अलग पांच जीव थे। जघन्य वाले ने उत्कीर्ण काल का एक एक समय में उसके सारे अपुनरुक्त ही हुए, अब वो स्थिति कांडक किया नहीं, उसके अंतिम समय में आकर उसको रुकाया है। अब जो उत्कृष्ट है उसने उत्कीर्ण काल का एक घटाया समय तो भी पुनरुक्त है, दो घटाए तो भी पुनरुक्त, तीन घटाए तो भी पुनरुक्त, चौथा घटाए तो इसके समान हो गया, परंतु उत्कीर्ण काल का और एक समय कट हो गया उसमें से, तो उसका एक समय वो नीचे आ गया, तो वो पुनरुक्त स्थान हुआ। हाँ, अब ये दूसरा ले रहे हैं, अभी दूसरा भी ऐसा करते करते समान होगा, और फिर बाद में उसका एक समय और नीचे आ गया वो, क्योंकि वो पूरा स्थिति कांडक करेगा तो वो उससे भी नीचे एक समय आया। यहाँ वाला वो पूरा स्थिति कांडक करेगा तो उसका, यानी यहाँ एक एक समय के डिफरेंस वाले सारे अपुनरुक्त स्थान मिलेंगे हमको। पहले वाले जीव को क्यों नहीं कराया है कांडक, क्योंकि उसमें तो गैप होना है, उसको बाद में लेना है। जैसे ये चार है ना, और उस चार को लांग कर उसका भी अपुनरुक्त होगा, फिर तो कंटिन्यूस में सारे अपुनरुक्त स्थान मिलेंगे हमें। तो पहला जघन्य लिया, फिर उत्कृष्ट लिया, फिर उत्कृष्ट के नीचे नीचे एक एक आएंगे, तो उसके बीच में एक 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 स्थान नीचे आएंगे, और ये स्थिति कांडक आयाम लांग कर नीचे आएगा तो उसका भी वो उसके नीचे स्थित हो जाएगा, अपुनरुक्त स्थान होगा। अब यहाँ हम दूसरे जीव जघन्य देखा, उत्कृष्ट देखा, अब और अन्य जीव की बात देख रहे हैं। देखो यहाँ हमने पढ़ रहे थे 101 पृष्ठ पर अंतिम लाइन, तत्पश्चात इससे दूसरे जीव के द्वारा तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता, यह पुनरुक्त स्थान है। द्वितीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फाली के अलग होने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों में चालू रहता है। तब तक तो ये सारे पुनरुक्त है। पश्चात इसी जीव के द्वारा तृतीय स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। ये पहले उत्कृष्ट वाले का देखा था, अब उसके नीचे वाला दूसरा जीव है, उसके कांडक समाप्त होने पर उसका भी अपुनरुक्त स्थान मिल जाता है। पुनः तृतीय जीव के द्वारा तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। अब इसको भी क्रम से एक समय कम उत्कीर्ण काल तक पुनरुक्त पुनरुक्त कहेंगे, यह पुनरुक्त स्थान है। पश्चात द्वितीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। इसी जीव के द्वारा तृतीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने पर, ये बीतने पर दिख रहा है, बीतने पर करना, फिर तृतीय स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह पुनरुक्त स्थान है, इसका कारण सुगम है। अभी ख्याल में है ना किस पोजीशन से? पांचवा जीव लिए, एक जघन्य जहां तक लाके बिठा है, फिर उत्कृष्ट वाला है, पूरा कांडक समाप्त होने के बाद अपुनरुक्त है। दूसरे के उसका भी पूरा कांडक होने के बाद उससे भी नीचे एक समय नीचे आया, तीसरे वाला उससे भी नीचे आया। तो ये एक एक समय के डिफरेंस के अलग अलग अपुनरुक्त स्थान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमको अनुत्कृष्टों के अलग अलग भेद देख रहे हैं हम। एक एक समय के डिफरेंस से इतने स्थान पाए जाते हैं, ये बात यहां बतानी है। तत्पश्चात चतुर्थ जीव के द्वारा तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यह पुनरुक्त स्थान है। द्वितीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार तब तक पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं जब तक एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण फालियां विघटित नहीं हो जाती। यहाँ तो तीन ही है, परंतु फिर भी उन्हें स्टेटमेंट तो ऐसा देना है, एक कम उत्कीर्ण काल तक। पश्चात अंतिम फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है, इसका कारण सुगम है। इस प्रकार जानकर एक कम उत्कीर्ण काल से अधिक स्थिति कांडक प्रमाण स्थानों को ले जाना चाहिए। ऐसे कितने स्थानों को ले जाना चाहिए? एक कम उत्कीर्ण काल यानी हम यहां अपने गणित में तीन, और अधिक स्थिति कांडक प्रमाण अधिक वो चार। ऐसे इतने स्थानों को अपुनरुक्त अपुनरुक्त नीचे तक आना चाहिए। तत्पश्चात अंतिम जीव के द्वारा पूर्व में स्थापित करके आई हुई अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर, अभी हमने कौन सा वो जीव लिया था? जघन्य वाला, वो अंतिम फाली पर लाके रोकाया था। अभी उसकी जब घटित विघटित होगी, उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। उसके बीच में वो सारे उत्कृष्ट से एक एक नीचे लाते लाते हमने वहां रुकाए थे। अब इसका स्थिति कांडक आयाम को लांग कर वो नीचे आया, तो उसका भी अपुनरुक्त एक समय के डिफरेंस वाला अपुनरुक्त स्थान हुआ। हम एक एक समय कहाँ कैसे घटित होता है अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा, वो यहाँ बताना चाहते हैं। इस प्रकार तृतीय परिपाटी की प्ररूपणा की है। इस प्रकार ध्रुव स्थिति से उत्पन्न होने वाले पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडकों का आश्रय करके निरंतर स्थानों की प्ररूपणा करना चाहिए। ये निरंतर स्थान है, एक 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 समय के डिफरेंस वाले, डिफरेंस है ना, एक एक समय कम वाले इतने स्थान वहां उत्पन्न कराना चाहिए। कितने स्थिति कांडक? यहां तो तीन चार ही बताए। पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडक, इतनी बार स्थिति कांडक हो गए अलग अलग, इतने जीव अलग अलग होगी ना वहां पर, तो उसके उतने स्थिति कांडक भी ले लेना अलग। हाँ, पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडक। अब संपूर्ण उत्कीर्ण काल से और एक स्थिति कांडक से अधिक, संपूर्ण उत्कीर्ण काल हमने चार माना था और एक स्थिति कांडक भी चार समय का माना था, उससे अधिक एक केंद्रीय स्थिति बंध के बराबर। ये ऐसे नीचे नीचे आते आते हम आ गए। पहले तो वो त्रस में से आया तो अधिक सत्कर्म था, स्थिति सत्कर्म बड़ा था उसका। अब इतने स्थिति कांडक, अब ये केंद्रीय में उत्पन्न कौन सा जीव आया है? ये कौन सा जीव लिया है? ये देखो कितना अधिक है, एकेंद्रीय स्थिति बंध के बराबर। एकेंद्रीय का स्थिति बंध उत्कृष्ट कितना हो सकता है? तीन सप्तमांश सागर। उसमें कितना अधिक वाला जीव लिया है? एक उत्कीर्ण काल और एक स्थिति कांडक, इतना अधिक समय उसमें मिला देना, इतनी स्थिति वाला जीव है ये लेना है यहाँ पर। ये चार और चार आठ हो जाएंगे, एक उत्कीर्ण काल चार और एक स्थिति कांडक चार, आठ समय। और हमने यहाँ ऐसा कुछ मान लिया नहीं एक इंद्रियों का कितना स्थिति बंध है होता है वैसे ख्याल है ना। तो एकेंद्रिय के स्थिति बंध के नहीं एकेंद्रिय का स्थिति बंध प्लस उत्कीर्ण काल प्लस स्थिति कांडक ऐसा कोई जीव लिया, अभी उस पर ये घटाएंगे आगे की बात। तो इतना स्थिति सत्कर्म युक्त जीव के द्वारा प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का एक समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। हम नीचे नीचे आए हैं ना अभी, हाँ जगन्य ये बंद बंद उत्कृष्ट है, बंद के ऊपर जो है वो इतनी सत्ता वाला जीव लिया है, कोई जीव इतनी सत्ता है उसकी कितनी है, वहां का जितना बंध है उससे थोड़ा अधिक है, कितना थोड़ा अधिक है, एक कांडक आयाम प्लस एक उत्कीर्ण काल इतना अधिक वाला जीव लिया। वो आबादा कांडक था, ये स्थिति कांडक है। हाँ हाँ स्थिति कांडक तो ये तो कुछ पल्ले के असंख्यात विभाग वैसे इतने हो गए अभी यहाँ का सागर तीन सप्तमांश सागर अकेला सागर, क्योंकि एकेंद्रियों में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध एक सागर होता है, पंचेंद्रियों में 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट स्थितिबंध ज्ञानावरण का 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, अभी 70 कोड़ा कोड़ी के लिए यहाँ एक सागर होता है तो 30 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना होगा, तीन सप्तमांश सागर एकेंद्रियों में उत्कृष्ट स्थितिबंध ज्ञानावरण का। हाँ नंबर ऑफ कांड पल्ले की असंख्या देगा देखो कांडक भी छोटे बड़े होते हैं, जितनी स्थिति घटती है उतना कांडक भी घटता है, बहुत बड़ी स्थिति होती है तो कांडक भी बड़े होते हैं, अभी उसमें जो कुछ वेरिएशन होगा। अभी यहाँ तो एक ही स्थित प्रमाण लेके बताए उन्होंने एक इंद्रियों में आने के बाद वहां की जो कुछ कांडक है, अभी ऐसा जीव लिया अभी उसने एक उत्कीर्ण काल का समय गया तो उसका एक नीचे आया, ये अपुनरुक्त हुआ उसका, क्योंकि हम एक एक समय नीचे तक आ गए ना। द्वितीय फाली के विघटित किए जाने पर आपको मिला 103 पृष्ठ है। हाँ उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी अपुनरुक्त स्थान है। तृतीय ये अभी मिनिमम स्थिति वाला लिया ना, इसलिए इसमें एक एक समय गलेगा तो भी अपुनरुक्त ही स्थान ले। तृतीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी अपुनरुक्त स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण अपुनरुक्त स्थानों के उत्पन्न होने तक चालू रहता है। अब इसे यूं ही स्थापित करके अंतिम फाली इसकी विघटित नहीं की है, क्योंकि दूसरा जीव लेंगे हाँ? और उसके पुनरुक्त घटाकर फिर जब कांडक करेगा तब ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह। अब इसको इधर ही ऐसे ही रखेंगे। पश्चात इन विवक्षित जीवों में से सर्वोत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मिक जीव के द्वारा, इनमें से जो कुछ अधिक स्थिति वाला जीव है उसके द्वारा विवक्षित स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित कर जाने पर स्थिति हुआ है। हाँ स्थिति कांडक पहला शब्द है ना, स्थिति करना, विवक्षित स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यह पुनरुक्त स्थान है। अब एक एक समय इसके गलाएंगे ये सारे पुनरुक्त होंगे, क्योंकि अधिक स्थिति वाला वो स्टार्टिंग में है। इसी जीव के द्वारा द्वितीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फाली के विघटित होने पर तृतीय करना तृतीय हुआ है, तृतीय समय तीसरी लाइन में तृतीय हुआ है, तृतीय करना तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने तक बीतने हुआ है बीतने तक चालू रहता है। फिर विवक्षित स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। क्योंकि अंतिम फाली के बीतने पर बी करना उसका पूर्व के अपुनरुक्त स्थिति सत्व से समानता को प्राप्त हुआ यह स्थिति सत्व क्या कहा पहले अपुनरुक्त जहां तक लाया था ना वहां तक ये समान हो गया और एक उत्कीर्ण काल का और एक समय गलने पर उसके नीचे आ गया। यह अपुनरुक्त है नहीं पहले खाली उसका उत्कीर्ण काल का एक निकाला है और फिर कांडक हाँ अधस्थिति के गलने से उसकी अपेक्षा एक समय कम देखा जाता है। तत्पश्चात अभी यहां भी ऐसे घटित करेंगे वहां तो हमने ऊपर घटित किया था ये अभी नीचे की ओर आ गए। यहां भी द्वितीय जीव के द्वारा ऐसा किए गए तो अंतिम फाली गिरने पर उसके भी अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न हो गए। देखो तत्पश्चात द्वितीय जीव के द्वारा प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, द्वितीय फाली के विघटित होने पर उसका द्वितीय समय गलता है, तृतीय फाली के विघटित होने पर उसका तृतीय करना उसका समय गलता है। इसको नहीं होगा क्योंकि वो जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे, जघन्य के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना उसको, तो उसका वो कांडक होने के बाद भी वो हाँ वो गैप लांग कर वो नीचे आ गया है, उसका एक समय उससे ओरिजिनल वाले से एक समय कम तक वो आ गया, बड़ी गैप उसकी नहीं हो रही है, इसीलिए पहले को रुकाया था। ये दूसरों के एक एक समय कम वाले हो गए फिर वो कांडक आयाम को लांग कर नीचे आएगा तो उसका भी अपुनरुक्त स्थान हो जाएगा, उसको भी उधर ही स्थापित किया था ना हमने। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने पर हुआ है। जब अंतिम फाली विघटित की जाती है तब उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। यह अभी अंतिम फाली विघटित होने पर इसका अपुनरुक्त आया, इसके कारण का कथन पहले के ही समान करना चाहिए। अब तीसरे और चौथे जीव पर भी ऐसे ही घटित करेंगे, उन्हें लिखने में कंटाला नहीं आया। हाँ देखो आचार्य है देखो उनको तो ऐसा कह सकते ना, ऐसे ही समझ लेना ये कितनी बार लिखा है, देखो करुणा करते हैं और हमको पढ़ने में कंटाला आता है, उनको लिखने में नहीं आया। पुनः तृतीय जीव के द्वारा प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, द्वितीय फाली के विघटित हो जाने पर उसका द्वितीय समय विघटित बराबर है क्या विध दिख रहा है ना अच्छा द्वितीय समय गलता है, अब तृतीय करना उसको। तृतीय फाली के विघटित किए जाने पर उसका तृतीय समय गलता है, इस प्रकार समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने पर फिर इसी जीव के द्वारा अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है, इसका कारण सुगम है। कारण तो अभी हम देख रहे हैं। पुनः चतुर्थ जीव के द्वारा प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। द्वितीय फाली के विघटित होने पर उसका द्वितीय समय गलता है, पुनरुक्त चाहिए, एवं पुनरुत्तानम होदी, पुनरुक्त है, ऊपर देखो, यह पुनरुक्त स्थान है चाहिए, और नहीं चाहिए, क्योंकि चतुर्थ जीव लिया है ना, हाँ, पहले समय, पहले भी हमने देखा था, देखो, चतुर्थ जीव जब जब लिया था, पुनरुक्त स्थान ही बताया, एदम पुनरुत्तानम होदी, एदम पुनरुत्तानम होदी, हाँ, 102 पृष्ठ पर भी आया था ये बात, द्वितीय फाली के विघटित होने पर उसका द्वितीय समय गलता है, तृतीय फाली के विघटित होने पर उसका तृतीय समय गलता है, इसी क्रम से वो सारे पुनरुक्त हो गए, हाँ, इसी क्रम से एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के उत्पन्न हो जाने पर, लिखा नहीं यहाँ पुनरुक्त, फिर पीछे इसी जीव के अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है, इसका कारण सुगम है। इस प्रकार पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीवों के आश्रय से हमने यहाँ चार जीव देखे और पहले वाला जघन्य वाला देखा, अब यहाँ कहते हैं ऐसे कितने अलग अलग जीव है, पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीवों के आश्रय से एक कम उत्कीर्ण काल से अधिक स्थिति कांडक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानों को उत्पन्न करा के एक 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 अलग अलग जीवों के द्वारा एक समय कम ऐसे स्थान उत्पन्न करना है, कितने, हाँ, स्थिति कांडक प्रमाण में एक कम उत्कीर्ण काल मिला दो, इतने अलग अलग स्थान उत्पन्न करा के फिर पूर्व में स्थापित वो जीव को अलग रखा था ना, देखो ये हमने जीव कितने लिए थे, यहाँ पर पूरा उत्कीर्ण काल और पूरा स्थिति कांडक, अब यहाँ कहते हैं स्थिति कांडक और एक कम उत्कीर्ण काल, इतने अलग अलग जीवों के आश्रय करके एक एक समय घटते हुए हमने अलग अलग भेद दिखाए, अब पहले वाला जीव लेना, उसको अलग रखा था ना, तो पूर्व में स्थापित अंतिम जीव का आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानों की उत्पत्ति का कथन करते हैं, वहां उसी को वहीं पर रुकाया था और उसके नीचे एक एक समय नीचे नीचे आए, क्योंकि वो अधिक स्थिति वाले जीव हम देखते थे, यथा अंतिम जीव के द्वारा विवक्षित स्थिति कांडक की, वो सभी जो स्थिति कांडक है वो कौन सा नंबर है वो विवक्षित उसी की बात चल रही है, तो विवक्षित स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, जो शेष है वह एकेंद्रिय के उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म रूप होता है, कहाँ गया ऊपर, एकेंद्रिय नाम सिद्धि संठीरे, वो तो अलग है, ठीक है, यह अपुनरुक्त स्थान है क्योंकि उसकी उत्पत्ति पूर्व में नहीं हुई है, एक 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 समय घटाते हुए कहां तक आए, एक इंद्रियों में उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म जितना हो सकता है वहां तक आ गए, यहां संदृष्टि में मूल में देखना है, ऊपर आगे के पेज पर है, एक इंद्रिय स्थिति के लिए दो बिंदु है जो काल की अपेक्षा सागरोपम के 3/7 भाग के सूचक हैं। तो ये सागर का 3/7 भाग अभी हमने घटित करके दिया था, एक इंद्रियों में जो अभी यहां तो स्थिति तक आ गए सत्ता में, अब यहाँ बंध की अपेक्षा से अलग अलग भेद बताएंगे, ये उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध भी उतना है ना, 3/7 सागर, तीन सप्तमोश सागर कैसा किया, जहाँ पंचेंद्रियों में 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध होता है मिथ्यात्व का, वहाँ एकेंद्रियों में उत्कृष्ट बंध एक सागर का होता है। तो 70 कोड़ाकोड़ी के लिए एक सागर, तो 30 कोड़ाकोड़ी के लिए कितने सागर, तो तीन सप्तमांश सागर, उसका उधर गणित ऐसा है। तो ये उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध है। इस स्थिति सत्व से एकेंद्रिय के स्थितिबंध का आश्रय करके अनुत्कृष्ट स्थिति विकल्पों को उत्पन्न कराना चाहिए। देखिए, हमने घटाते घटाते त्रस में से आया हुआ जी उसका स्थिति सत्व घटाते घटाते वहां तक आया। अब कहते हैं एकेंद्रियों में, अभी इसके आगे के जो विकल्प अलग अलग स्थिति के भेद बताएंगे वो बंध का आश्रय करके बताएंगे। तो किसी का तीन सप्तमांश सागर बंध है, किसी का एक समय कम है, किसी का दो समय कम है, इस तरह से। यथा बादर एकेंद्रिय के जीव के द्वारा, बादर एकेंद्रिय जीव के द्वारा एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये जो तीन सप्तमांश जो है सागर, वो बादर में होगा, सूक्ष्म में कम होगा, इसलिए इसको बादर एकेंद्रिय कहा। और उसके भी अनुत्कृष्ट स्थानों में भी फिर बादर को ही लिया। दो समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। अभी अलग अलग जीव लिए, तीन समय कम बांधा, चार समय कम बांधा, हाँ, तीन समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अन्य अपनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार चार पांच आदि समयों की हीनता के क्रम से जितने संकलेश कम उतना स्थितिबंध कम। कहाँ तक ले जाना, सर्व विशुद्ध बादर एकेंद्रिय पर्याप्त आया ना, ये एक बादरों में एकेंद्रियों में भी सर्व विशुद्ध कहा, वहां पॉसिबल जो विशुद्धि है उसको सर्व विशुद्ध कहा। तो इस क्रम से सर्व विशुद्ध बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, ये पर्याप्त लिया हूं, पर्याप्तों के लिए पॉसिबल है वो, क्योंकि अपर्याप्तों में स्थितिबंध कम होगा। आपको याद है हमने ऐसे चार देखे थे, वो बादर पर्याप्त ऐसा, बासुप बासु ऐसा, देखो यहाँ कहाँ तक आए, बादर एकेंद्र पर्याप्त जीव के द्वारा बांधी गई जघन्य स्थिति के सत्व समान स्थिति के होने तक उतारना चाहिए। वहां तक आ गए हम। अब एकेंद्रियों में प्राप्त सब स्थान पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मात्र ही है। एकेंद्रियों में जो स्थिति के अलग अलग स्थान हैं, वो कितने हैं, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। तीन सप्तमांश से सागर से हमने देखे थे, हाँ, ये बंद, ये कहीं पर सत्ता के लिए कहीं बंद है, बंद की अपेक्षा ही अलग अलग स्थान है, बंद के ही स्थान है अलग अलग। क्या पहले सत्ता के लिए, फिर एकेंद्रियों में बंद की अपेक्षा ले, अकेले बादर एकेंद्रियों में देख रहे हैं, उत्कृष्ट है तीन सप्तमांश सागर एकेंद्रियों में उत्कृष्ट। हाँ, ऊपर सत्ता स्थान बहुत है और यहाँ बंद की अपेक्षा अलग अलग स्थान बता रहे हैं ना, बंद ही स्थान, क्योंकि अभी हम बंद की बात देख रहे हैं। तो कितने हैं वो, पल्ल के असंख्यात विभाग मात्र, यानी एक एक समय, एक एक समय हम अलग 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 देख रहे हैं, अलग अलग बंद की अपेक्षा, तो पल्ल के असंख्यात विभाग इतने स्थान होंगे। क्योंकि अभी इसके लिए कारण क्या बताते हैं, उनमें विचार स्थान पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र ही होते। ये विचार शब्द कहीं सुना है आपने, हाँ, पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार। विचार यानी क्या, विचार का अर्थ क्या है, नहीं, एकेंद्रीय जीव ऐसा विचार नहीं करते, विचार नहीं, वो विचार है, विचार, विचार यानी संक्रमण होना, पलटना। वहां जो हम शुक्ल ध्यान में देखते हैं ना, विचार यानी क्या है, वहां पर एक योग से अन्य योग में, एक विषय से अन्य योग में, यानी शब्द से शब्दांतर, या वहां के ना अर्थ से अर्थांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, अर्थ से, हाँ। तो विचार यानी पलटना, दूसरी वी, हाँ बड़ी ई है ना, तो विचार यानी पलटना। तो विचार स्थान यानी अलग अलग स्थान, पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र ही होते हैं, ऐसा गुरु का उपदेश है। एक इंद्रियों के स्थान, वो मिथ्यात्व के लिए, हाँ ये बंधक के अलग अलग स्थान है, हाँ इतना बंधक के अलग अलग, वो ऐसा बताते हैं। कितने स्थान है, पल्ले के असंख्यात विभाग स्थान है, एक एक समय के डिफरेंस से, तो मिनिमम बंधक कितना होगा? अभी मैं ऐसा पूछू तो आपको उत्तर समझ में आएगा। मैक्सिमम बंधक 3 सप्तम और सागर, मिनिमम बंधक कितना हो सकेगा? हाँ तो 3 सप्तमांश में से पल्ले का असंख्यात विभाग माइनस कर दो, माइनस करना ना, जरा पट्टी लेना, ये पल्ले के असंख्यात विभाग के बदले हम 20 समझते हैं, तो अधिक से अधिक 1000 समय बांधता था, और उसमें भेद कितने स्थिति के? 20 भेद है, 20 भेद है ना, 999 वाला एक भेद, ये 1000 वाला एक भेद गिनो ना, 999 वाला दूसरा भेद, 998 वाला तीसरा भेद, ऐसे 20 स्थान नीचे आ जाओ, 20 उसमें माइनस करो और उसमें एक मिला दो, क्योंकि उसको भी गिनना है ना 20 में, तो इतने वहां। इतने स्थान है, उसमें मैक्सिमम स्थान कौन सा है? 3 सप्तमांश सागर वाला, और उसमें एक समय कम, दो समय कम, तीन समय कम, कितने नीचे आ सकते हैं? पल्ले के असंख्यात विभाग वो 3 सप्तमांश से में से कम करो, इतना ही नीचे आ सकते हैं, हाँ। एक इंद्रियों की, एक इंद्रियों में, बादर की ऐसी नहीं, वो उत्कृष्ट स्थान बादर वाले को था, एक इंद्रियों में इतने स्थान है। देखो अब ये सारे वो बासुप वगैरह वो यहाँ नहीं लिए, हमने देखा था ना एक इंद्रियों में उत्कृष्ट स्थान किसको होगा? बादर एक इंद्रियों को, उससे नीचे सूक्ष्म एक इंद्रियों को, उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त वो समझना, ये बादर पर्याप्तों को उत्कृष्ट होगा, फिर बादर अपर्याप्तों को होगा उत्कृष्ट, फिर सूक्ष्म पर्याप्तों का उत्कृष्ट होगा, और फिर सूक्ष्म अपर्याप्तों का उत्कृष्ट होगा, उसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्तों का जघन्य होगा, उल्टा क्रम लेना, सूक्ष्म पर्याप्तों का जघन्य होगा, फिर बादर अपर्याप्तों का जघन्य होगा, और बादर पर्याप्तों का जघन्य होगा, ये सारे एक इंद्रियों के स्थान है अलग अलग, ये सारे पल्ले के असंख्यात विभाग हो गए। अब इसको छोड़कर पंचेंद्रियों की ओर डायरेक्ट बढ़ रहे हैं अभी हम, यहाँ ये विषय नहीं है ना, इसलिए उसकी चर्चा में नहीं गए। इससे भी कम है, ये एक इंद्रियों की ये रेंज है, अब जो क्षपक श्रेणी वाला उसके भी नीचे वाली है, हाँ एक इंद्रियों के, पंचेंद्रियों में वहां तक ही पॉसिबल थे, तो बीच वाले स्थान उसके नहीं हो गए, हाँ वो वाले उसके नहीं हो गए। हमने देखा था ना जब श्रेणी चढ़ता है तब वहां हमने देखे थे असंगी के बंद स्थान जैसे है, फिर चतुरिंद्री जैसे है, फिर आपको याद होगा हमने शपक श्रेणी की बात जब उसके साथ की थी, इतने एकेंद्रिय के समान स्थिति बंद हो रहा है, स्थिति सत्व की भी कंपैरिजन के लिए की थी और स्थिति बंद की भी की थी। स्थिति बंद भी घटता चला जाता है और वहां के जो क्षपक श्रेणी वालों के स्थिति सत्व भी घटता चला जाता है और उसकी कंपैरिजन, ये असंगी जितना हुआ है, अब कहते हैं चतुरिंद्रिय जितना हुआ है, तीन इंद्रिय जितना हुआ है, दो इंद्रिय जितना हुआ है, एक इंद्रिय जितना हुआ है, वो क्षपक श्रेणी में वो पॉसिबल था। अब ये बीच वाले जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय के वो लांग कर अभी क्षपक श्रेणी की बात डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि अपना विषय यहां तो स्थान बताने का है। अनुत्कृष्ट स्थान वो ज्ञानावरण के कहां कहां पाए जाते हैं उसकी बात यहां बता रहे हैं। अब जघन्य की जघन्य वो बता देंगे यहां पर। अब देखते हैं इस स्थिति के नीचे मिला ना, तीसरी लाइन नीचे के पैराग्राफ में, क्षपक श्रेणी का आश्रय करके अन्य अंतर्मूर्त मात्र स्थान प्राप्त होते हैं। वहां कितने स्थान हो गए? अंतर्मूर्त जितने स्थान हो गए, अलग अलग अंतर्मूर्त में जितने समय है उतने अलग अलग भेद, उतने अलग अलग स्थान प्राप्त हो गए। यथा एक जीव क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर अनिवृत्तिकरण क्षपक हुआ, नवे गुणस्थान वाला क्षपक श्रेणी वाला लिया हो, उपशम श्रेणी वाला क्यों नहीं लिया? वहां तो सत्ता बनी रहती है, स्थिति है ना। हाँ, यहाँ क्षपक में तो ये क्षय की ओर बढ़ रहा है ना। हाँ, तो अनिवृत्तिकरण क्षपक हुआ, पश्चात अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभागों के बीतने पर, यह अभी क्या हो रहा है वहां अनिवृत्तिकरण में आया है, उसका विशुद्धि कितनी बढ़ रही है, विशुद्धि के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है वहां पर, स्थिति कांडक घात हो रहे हैं। स्थिति कांडक घात और अप्रशस्तों का अनुभाग कांडक घात भी होता है वहां पर। तो इतने बार उसके स्थिति कांडक हुए, हजारों होते ना संख्या था, हजारों हजारों ऐसे हमने पढ़ा था, तो स्थिति इतनी घट गई इतने कांडक घात होने पर, तो क्या होगा? वह असंगी जीव के स्थिति बंध के समान स्थिति सत्व को करता है, यानी ये तो उसके पुनरुक्त स्थान हुए ना, बराबर। तत्पश्चात अंतर्मूर्त काल बिताकर चतुरिंद्रिय के स्थिति बंध के समान स्थिति सत्व को करता है। असंगी का कितना स्थिति बंध था? हजार क्या? हाँ, हजार सागर, ये हजार सागर। अब चतुरिंद्रिय का 100 सागर, समान स्थिति सत्व को करता है। स्थिति सत्व घटाते ना, स्थिति कांडकों के द्वारा स्थिति सत्व घटा रहा है। पश्चात अंतर्मूर्त काल बिताकर वह त्रिंद्रिय जीव के, देखो एक ही अनिवृत्तिकरण में इतने इतने अंतर्मूर्त होते हैं, एक एक कांडक के लिए भी एक एक अंतर्मूर्त, ऐसे हजारों हजारों स्थिति कांडक घात होते हैं, तब जाके हजार सागर की स्थिति घटकर 100 सागर तक आ जाएगी। अब 100 सागर की घटकर 50 सागर पर आ जाएगी, तीनरे के लिए 50 सागर, इतनी स्थिति घट गई उसकी। पश्चात अंतर्मूर्त काल जाकर वह द्विंद्रिय जीव के स्थिति बंध के समान यानी 25 सागर। अभी यहां भी 25 × 3 सप्तमांश लेना ज्ञानावरण में ज्ञानावरण की बात है। ये जो 50 हमने देखा वो मिथ्यात्व की बात की थी, ये 25 में भी 3 सप्तमांश × 25 लेना। स्थिति सत्व को करता है। तत्पश्चात अंतर्मूर्त के बीतने पर, वो बीतने पर हुआ, एकेंद्रिय जीव के स्थिति बंध के समान, एकेंद्रिय में हमने देखा था ना 3 सप्तमांश, हाँ तो 3 सप्तमांश हुआ, समान स्थिति सत्व को करता है। इस प्रकार क्षपक श्रेणी में कहकर आए हुए ये सभी स्थिति सत्व स्थान पुनरुक्त ही है। क्या कहा? कहकर आए हुए ने क्षपक श्रेणी में नवे गुण स्थान में गया, संख्यात बहुभाग बीतने पर क्या हुआ? उसका स्थिति कांडक तो होते ही रहे ना, स्थिति कांडक घात कहाँ से होते हैं? अपूर्वकरण से, और ये अनिवृत्तिकरण में आया, वहां भी इतने बार हुआ, तो अभी नवे गुणस्थान में आने पर उसका इतना सत्ता में जो कर्म पड़े थे उसकी स्थिति इतनी घट गई कि तो असंगी के समान हुए। तो असंगी वाले सारे पुनरुक्त है ना, वही अभी क्षपक में आ रहे। फिर चतुर इंद्रिय, तीन इंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय, एकेंद्रियों में भी बता के ही आए थे सारे स्थान। एकेंद्रियों में घटाते घटाते पल्ले का असंख्यातवा भाग घटा दिया था हमने तीन सप्तमांश सागर में, वहां तक तो हमने वहां पर बताए थे स्थान। तो ये एकेंद्रिय के समान स्थिति बंध हुआ, तो वहां तक तो ये सारे पुनरुक्त स्थान ही है, इसके आगे वाले अपुनरुक्त हो गए। क्योंकि एकेंद्रिय जीव के जघन्य बंध की अपेक्षा ये स्थितियां बहुत पाई जाती हैं। क्योंकि हम कहां तक आए? एकेंद्रिय के बंध के समान उत्कृष्ट तक। अब उसमें भी इतने पल्ले के असंख्यात विभाग, इतने भेद है, तो ये जो सारी स्थितियां जो है हजार सागर से लेकर वहां तक, ये बहुत है, ये सारे पुनरुक्त हुए। पुनः एकेंद्रिय के स्थिति सत्कर्म में से, स्थिति सत्कर्म ने सत्ता वाली जो, उसमें से पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडकों को चाहिए ना, कांडक को, स्थिति कांडक को, कांडक को असंख्यात वे क्या कहते हैं, एकेंद्रिय के स्थिति सत्कर्म में से पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडक को ग्रहण करता है। उसका कितनी सत्ता थी? एकेंद्रियों की जितनी स्थिति है उसमें एक कांडक कितना है? पल्ल का असंख्यात भाग। कितने कांडक ग्रहण करता है उसको नहीं कहा, कांडकों को नहीं कहा। देखो फिर उसका आयाम, एकेंद्रिय की जितनी स्थिति थी उसमें से पल्ले के असंख्यात भाग इतना कांडक का आयाम है, उसको ग्रहण करता है। एक क्षपक श्रेणी वाला जो क्षपक है वो, उसका कांडक का आयाम कितना है वहां पर? तो पल्ले के असंख्यात भाग कितना है, ये ख्याल में आया? एक क्षपक श्रेणी वाले की बात की है, वो घटाते घटाते उसकी सत्ता कितनी रह गई है वहां पर? एकेंद्रिय के समान आई है। अब वहां स्थिति कांडक चल रहा है एक क्षपक श्रेणी वाले का, वो कांडक का आयाम कितना है? पल्ले के असंख्यात भाग जितना है। अभी एकेंद्रियों में जितने पॉसिबल है वो हो चुके, अभी उसके आगे हम क्षपक श्रेणी में अपुनरुक्त देखने जा रहे हैं। जहां तक पॉसिबल है जघन्य स्थिति वाले तक, वहां तो पुनरुक्त स्थान थे क्षपक श्रेणी वाले के भी। अब क्षपक श्रेणी में आगे के जो स्थान होंगे वो अपुनरुक्त होंगे, जो एकेंद्रियों में भी नहीं पाए जाते ऐसे होंगे, उसको अभी यहां बता रहे। तो यहां का जो कांडक होगा, इतनी स्थिति होने के बाद एकेंद्रिय के समान स्थिति हुई, अब यहां का कांडक कितना बड़ा है? तो पल्ले के असंख्यात भाग जितना बड़ा कांडक है। वह जब तक विघटित होता है तब तक, इसका अर्थ क्या है? कब तक विघटित होगा, कितना काल लगेगा, उसको क्या कहते हैं? उत्कीर्ण काल। हाँ, अब यहां केवल उत्कीर्ण काल कहा है, उसका नाम है स्थिति कांडकोत्करण काल। तो जब तक विघटित होता है ना, एक फाली, दो फाली, तीन फाली, छोटे अंतर्मूर्त में सब नीचे आता है, तो उसको देखो, उत्कीर्ण काल है अंतर्मूर्त छोटा, और कांडक कितना उसमें नष्ट होता है? पल्ले के असंख्यात विभाग, इतने इतने वर्षों की स्थिति एक साथ घट जाएगी अंतर्मूर्त में। तो जब तक वो विघटित होता है तब तक क्या होगा? एक समय गला, दो समय गले, तीन समय, एक एक निशे खिर रहा है ना। हाँ, तो उसमें उत्कीर्ण काल के एक एक समय में एक एक निषेक गलेगा, उसकी स्थिति एक एक समय से घटेगी। तो अधस्थिति के गलने से, यानी नीचे के निषेक खिरने से अंतर्मूर्त मात्र स्थान प्राप्त होते हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं, समझ में आया ना? कितना अंतर्मूर्त बड़ा होगा ये? उत्कीर्ण काल जितना बड़ा होगा उतना ख्याल है। ये क्या कहा, जब तक विघटित होता है तब तक, यानी उत्कीर्ण काल, एक स्थिति कांडक होने के लिए जितने समय लगते हैं, जब तक अंतिम फाली नहीं गिरती है तब तक एक एक समय से एक एक निषेक कर लेगा। तो ऐसे कितने स्थान हो गए अंतर्मूर्त, कौन सा अंतर्मूर्त, वो उत्कीर्ण काल वाला अंतर्मूर्त, तो स्थिति के इतने भेद हो जाएंगे वहां पर। वे पुनरुक्त है क्योंकि वे एकेंद्रियों में प्राप्त स्थानों के अंतर्गत है, क्योंकि हमने देखे थे ना एकेंद्रियों के जगन्य बंध की अपेक्षा ये स्थितियां बहुत ज्यादा थी, तो ये तो एकेंद्रियों में थी, अभी वहां तो अभी एकेंद्रियों में है, इतने यहां तक आ गए हम। पश्चात ग्रहण किए स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर, अभी अंतिम फाली वो कितना, अभी एक स्थिति कांडक पूरा हो जाएगा, पल्ले के असंख्यात पे भाग इतना एक कांडक होगा। एकेंद्रिय संबंधी विचार स्थानों की अपेक्षा असंख्यात गुणा हटकर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। एकेंद्रियों में जो हमने देखे थे अलग अलग पॉसिबल, तो उससे भी असंख्यात गुणा ऐसा अपुनरुक्त स्थान होगा, यानी बीच में बड़ा गैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो उतना स्थिति कांडक का आयाम है उतना वो नीचे आ जाएगा, तभी वो एकेंद्रियों में जो हमने अलग अलग देखे थे उससे भी नीचे वाला ये अलग स्थान मिलेगा। तत्पश्चात द्वितीय समय में दूसरे स्थिति कांडक को ग्रहण करता है, ऊपर एक ही स्थिति कांडक को लिया था हा? अभी दूसरा स्थिति कांडक शुरू हुआ, बीच में गैप हो गया, देखो क्या हुआ था, क्षपक श्रेणी की बात चल रही है। क्षपक श्रेणी में जो कोई सत्ता में निषेक थे, अभी ज्ञानावरण की बात देख रहे ना, तो उसमें से इतना उसने कांडक किया पल्ले के असंख्यात भाग जितना, वो कितने समय तक हम मान लेते, चार समय तक चला, तो यहां से थोड़े निषेक नीचे आए, यहां एक समय गला नीचे का, दूसरे थोड़े निषेक नहीं, दूसरे थोड़े परमाणु निषेक में से आए, दूसरा लौट आया, ये दूसरे गए, तीसरी फाली गई, ये तीसरा निषेक, अंतिम फाली नीचे आई, ये चौथा। तो अभी यहां जो हुआ एकदम गैप हुआ ना, उत्कीर्ण काल कम होने से तो एक एक निषेक कम होता था, तो निरंतर लगातार ऐसे एक एक समय घटते हुए कुछ स्थान हुए, और बाद में एकदम जंप हुआ। अब ये कोई यहाँ बीच में एक केंद्रीय नहीं, अलग अलग जीव के वो बीच में उसको, और यहाँ क्षपक श्रेणी में भी अलग अलग जीव नहीं हो गए कि जिसके अलग अलग हाँ, तो उसके समय भी वो सब समानता हो जाएगी। तो ये ड्रॉप होने के कारण यहाँ जंप किया उसने, ये अंतर वाला स्थान हो जाएगा, अंतर करके अब क्या हो जाएगा, दूसरा स्थिति कांडक घात शुरू हो जाएगा, फिर एक एक समय घटेगा जब तक उत्कीर्ण काल है, और बाद में जब पूरा अंतिम फाली गिर जाएगी तो फिर जंप करेगा, अंतर वाला स्थान मिलेगा। अब ये बात यहां बताने जा रहे हैं। ये कहां है, दो दूसरा हाँ, तत्पश्चात द्वितीय समय में मिला ना, दूसरे स्थिति कांडक को ग्रहण करता है, उस स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल में से एक समय के गलने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है, ये भी है ना, क्योंकि अभी वो एक कांडक घटा के नीचे इतनी स्थिति रही है, अभी अब इसमें से एक 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 गलेगी तो ये अपुनरुक्त स्थान हो गए, एक एक समय के डिफरेंस वाले अपुनरुक्त स्थान हो गए। जब ये कांडक पूरा गिर जाएगा तो क्या होगा, अपुनरुक्त ही होगा परंतु गैप के बाद वाला होगा, ऐसे एक कांडक के बाद दूसरा कांडक, तीसरा कांडक, तो निरंतर कुछ स्थान हो गए और कोई अंतर वाले होंगे, सांतर होंगे, दूसरे कांडक को ग्रहण करता है, उस स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल में से एक समय के गलने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है, द्वितीय समय के गलने पर द्वितीय अपुनरुक्त स्थान होता है, तृतीय समय के गलने पर तृतीय अपुनरुक्त निरंतर स्थान होता है। ये निरंतर शब्द डाला, जो उत्कीर्ण काल के जितने समय है उत्कीर्ण काल वहां तक निरंतर स्थान उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उत्कीर्ण काल के द्विचरम समय तक निरंतर स्थान पाए जाते हैं। इसका अर्थ ख्याल में आया? हाँ, प्रेरणा वे उत्कीर्ण काल में तो नीचे का एक एक निशय निकल रहा है, क्योंकि स्थिति कांडक का प्रोसेस चल रहा है, परंतु वो निशेक वहां पर बने हैं, वो पूरे निशेक मिट नहीं गए हैं। कांडक पूरा हो जाएगा, अंतिम फाली नीचे आएगी, तब वो निशेक समाप्त हो गए वहां के। तो ये सारे निरंतर स्थान पाए जाएंगे। फिर अंतिम फाली विघटित होती है, उसके विघटित हो जाने पर पल्योपम के संख्यात्वे भाग मात्र अंतर करके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये बीच में पल्य का संख्यात्व भाग वाला अंतर छोड़कर अपुनरुक्त स्थान होगा। तत्पश्चात अन्य स्थिति कांडक को ग्रहण करता है, फिर तीसरा स्थिति कांडक शुरू हो जाएगा, फिर उत्कीर्ण काल में एक एक समय वाले निरंतर स्थान हो गए। पल्य का असंख्यात भाग कहा था ऊपर उन्होंने, यहाँ पल्य का असंख्या संख्य यदि तो वहां संख्य यदि करना चाहिए ऊपर। पहली लाइन में एकेंद्रीय के स्थिति कर्म में से पल्योपम के संख्यात्वे चाहिए वहां। ए इंद्रिय ठिदी संत कम्मी पल्लिदो वमस्य संख्य यदि भाग में तो आपके उसमें क्या लिखा है हिंदी में? वहां नहीं, पहली लाइन में, हिंदी के पहली लाइन में वहां पल्य का संख्यात्वा छोड़कर संख्यात्वा करना। देखो हाँ, 107 पृष्ठ में तीसरी लाइन, एकेंद्रिय के स्थिति सत्कर्म में से पल्योपम के संख्यात्वे भाग मात्र चाहिए, स्थिति कांडक को ग्रहण करता है। हाँ, जो साइन दिए वहां नीचे असंख्य यदि पाठल लिखा है, पर यहाँ अंतर पल्य का संख्यात्वा भाग किया है, तो कांडक भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि उत्कीर्ण काल तो अंतर मुहूर्त है, तो अंतर मुहूर्त तक तो निरंतर स्थान हो गए, और अंतर होगा पल्य का संख्यात्वा भाग, बराबर है? हाँ, माइनस समय, वन समय, बराबर है। अपुनरुक्त स्थान होता है, मिला। तत्पश्चात अन्य स्थिति कांडक को ग्रहण करता है, उस स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल में से एक समय के गलने पर अन्य अपुनरुक्त निरंतर स्थान होता है। ये निरंतर वाला लगातार एक 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 समय में एक एक स्थान होगा। द्वितीय समय के गलने पर अन्य अपुनरुक्त निरंतर स्थान होता है। ये निरंतर शब्द डाला है खास। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण अपुनरुक्त निरंतर स्थान पाए जाते हैं। पश्चात उत्कीर्ण काल के अंतिम समय के गलने पर वहां अंतिम फाली भी गिरती है, तो फिर वहां गैप होगी। अंतिम फाली प्रमाण स्थानों का अंतर करके, अभी यहाँ तो इतना ही बतला है, जो स्थिति कांडक का प्रमाण है ना, जितना कांडक है उतनी एक एक फाली है, तो अंतिम अंतिम फाली बड़ी है ना, परंतु वो अंतिम फाली का जितना प्रमाण है उतना अंतर होगा, उतने कम हो गए ना एक साथ। हाँ, अंतर मुहूर्त जो उत्कीर्ण काल का अंतर मुहूर्त है, उसमें से एक समय कम तक लगातार निरंतर स्थान थे। हाँ, और अंतिम फाली गिर गई, तो फाली जितनी है उतने कांडक प्रमाण गैप होगा। स्थानों का अंतर करके अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार अब ये समझ में आया ना, निरंतर कैसे और अंतर कैसे। उत्कीर्ण काल में निरंतर स्थान हो गए, और जब कांडक पूरा होता है अंतिम फाली गिरती है, तो सांतर वाला अंतर करके स्थान होगा। इस प्रकार निरंतर और सांतर क्रम से स्थान तब तक पाए जाते हैं जब तक वो स का त करना, यानी ये कहां से शुरू हुआ था? अनिवृत्ति से। हाँ, अनिवृत्तिकरण के बाद सूक्ष्म सांप्राय और अभी क्षीण कषाय में आ गया हो, ये कांडघात तो होते ही रहते हैं। तब जब तक क्षीण कषाय गुणस्थान के काल का संख्यात बहुभाग बीतता है, वो निरंतर स्थान, फिर शांतर स्थान, फिर निरंतर स्थान, फिर शांतर स्थान। अभी आगे के चल के कांडक छोटे हो गए, इसलिए वो कांडक का प्रमाण जितना है उतना कहा उन्होंने, फाली का प्रमाण। बीतता है करना, बीतता हुए ना, बीतता है। पश्चात क्षीण कषाय जीव के अंतिम स्थिति कांडक की, देखो जहां वो स्थिति कांडक समाप्त तो होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्षीण कषाय में भी एकदम लास्ट समय में वो कांडक पूरा नहीं होता है, क्योंकि कांडक करेगा तो जाएगा कहाँ वो सारे, तो अंत में थोड़े निषेक छोड़कर वहां तक कांडक समाप्त हो गए। तो अंतिम जो कांडक है, तो अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर, वो विघटित हो गई यानी वहां अंतर छोड़ के वहां एक स्थान उत्पन्न हो गया। अब वहां से आगे क्या होगा, क्षीण कषाय के अंतिम समय तक क्षीण कषाय काल के संख्यात्वे भाग मात्र। अब यहाँ पोजीशन क्या हुई, अभी हम मान लेते हैं ये अंतिम पोजीशन आ गई है क्षीण कषाय की। तो क्षीण कषाय में जो अंतिम कांडक हुआ वो घटते घटते उस समय ये भी नीचे से गिर गए। अभी ये जो कुछ संख्यात्वा भाग है वो भी अंतर्मूर्त प्रमाण है। अब कांडक घात समाप्त तो हुआ है, अब क्या होगा, अब एक 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 निषेक गिरेगा, बराबर है ना। तो ये सारे स्थिति के विकल्प कहने में आएंगे। तो कहते हैं कहाँ गया, चलो हाँ, क्षीण कषाय के संख्यात विभाग मात्र उदय क्षय से, उदय क्षय ने उदय होकर एक एक निषेक फिर रहा है उसको कहा उदय क्षय। उदय क्षय से निरंतर, निरंतर ने एक एक समय के डिफरेंस वाले अपुनरुक्त स्थान पाए जाते हैं। यहाँ क्षपक श्रेणी में प्राप्त निरंतर स्थान अंतर्मूर्त प्रमाण होते हैं। क्षपक श्रेणी में प्राप्त है ना, वो जो हमने अनिवृत्तिकरण के बाद देखा था वहां से लेकर निरंतर स्थान, क्यों, उत्कीर्ण काल जितना है वो निरंतर हो, और फिर शांतर कब होगा, जब अंतिम फाली गिरी जाएगी। तो निरंतर स्थान अंतर्मूर्त प्रमाण होते हैं, क्योंकि एक कम उत्कीर्ण काल को संख्यात हजार रूपों से गुणित करने पर क्षपक श्रेणी में उत्पन्न समस्त निरंतर स्थान प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं, संख्यात कांडक कितने होते हैं, कांडक घात संख्यात हजार, ये तो एक बार लिखा संख्यात हजार, हमने नवे गुणस्थान में ही संख्यात हजार संख्या अनेक संख्या तो बार देखी थी। ये प्रोसेस हुआ संख्यात हजार स्थिति कांडक हुए, ये प्रोसेस हुआ संख्यात हजार स्थिति कांडक हुए। अपूर्व स्पर्धक वो सब वहां से देखा था ना, वो आठवें गुणस्थान से ही देखा था, ये कृष्टि करते हैं तब हर एक के बीच बीच में संख्यात हजार संख्यात हजार, वो सबकी टोटल भी संख्यात हजार कही उन्होंने। तो एक कांडक होने के लिए, एक कांडघात होने के लिए एक उत्कीर्ण काल, तो संख्यात हजार स्थिति कांडक हुए तो संख्यात हजार उत्कीर्ण काल हो गए। तो एक उत्कीर्ण काल अंतर्मूर्त मल्टीप्लाइड बाय संख्यात हजार, वो भी अंतर्मूर्त ही होगा, क्योंकि सारी क्षपक श्रेणी मिलकर भी अंतर्मूर्त होती है ना, हाँ इसलिए। तो ये कहते हैं एक कम उत्कीर्ण काल को संख्यात हजार रूपों से गुणित करने पर क्षपक श्रेणी में उत्पन्न समस्त निरंतर स्थान, सभी निरंतर स्थानों की टोटल उतनी होती है, वो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त ही होगी, परंतु शांतर स्थान संख्यात ही है, क्योंकि क्षपक श्रेणी में संख्यात ही स्थिति कांडकों का विघटन पाया जाता है। ऐसा कैसा, देखो संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहां नहीं पाए जाते, नहीं वो तो बीच में अंतर छूट गया है, पल्योपम पल्य का असंख्यात्व या संख्यात्व भाग को उतना तो अंतर छूट गया है, उतने नहीं पाए जाते। ऐसा है ना, देखो शांतर स्थान संख्या थी है, बराबर है? संख्या हजार को या संख्या एक ही बात है ना। देखो निरंतर स्थान अंतर मुहूर्त वाले तो निरंतर हुए, शांतर एक ही होगा ना, एक अंतर पड़ गया, फिर निरंतर लगातार अंतर मुहूर्त वाले, फिर एक हुआ, तो ये संख्या थी हो गए। जितने बार स्थिति कांडक घात हुए है, संख्यात हजार बार हुआ है, तो संख्यात, तो संख्यात कहा उसको, वो हजार आगे का कैंसिल कर दिया, संख्यात हजार भी संख्यात ही संख्या है, तो उतनी बार वहां गैप हो गए, उतने शांतर स्थान हो गए। संख्यात स्थिति कांडकों का विघटन पाया जाता है, ये संख्यात हजार भी संख्यात ही संख्या है, इसलिए हम संख्या देने दो चार पांच समझते हैं ना। संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहां नहीं पाए जाते, यानी वो पल्योम में नहीं जाते, या संख्यात में नहीं है, संख्यात में है, यहां न प्राप्त होने वाले। नहीं नहीं यहां दूसरी बात कह रहे, ये जो गैप है ना, हमने देखा ये तो स्थान कितने पाए जाते हैं तो संख्यात पाए जाते हैं, और बीच में गैप कितनी छुट्टी, देखो यहां पार्टी पर देखना, हमने देखा था ये निरंतर स्थान थे, जितना कांडक बड़ा है उतना गैप छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, यानी वो बीच में एक एक समय वाले इतने स्थान नहीं पाए जाते, तो एक 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 अंतर कितना था, पल्ले का संख्यात्वा भाग, पल्ले का संख्यात्वा भाग एक स्थान था, ऐसे कितने स्थान, ऐसे संख्यात स्थान है, संख्यात यानी संख्यात हजार कुछ भी कहो ना, तो ये इसकी टोटल कितनी होगी, संख्यात पल्ले होगी, संख्यात पल्ले इतने स्थानों का कोई स्वामी नहीं है ये कहना चाहते हैं। बीच में जो अंतर छूटा है वहां कोई जीव स्वामी नहीं है, उसको कहते हैं संख्यात पल्योपम स्थान यहां नहीं पाए जाते हैं, यानी उसका स्वामी कोई नहीं है। यहां न प्राप्त होने वाले इन स्थानों को कर्म स्थिति में से कम कर देने पर जो शेष रहता है उतना अनुत्कृष्ट स्थान के विकल्पों का प्रमाण है। हमने उत्कृष्ट के बाद एक समय कम से चालू किया था, बीच वाले सारे ही स्थानों को कवर किया था, बीच एक के अन्य अन्य सबके, फिर क्षपक श्रेणी में लिए, तो क्षपक श्रेणी में ये गैप वाले कुछ स्थान पाए जाते हैं, इसको टोटल में से घटा दो, इतने अनुत्कृष्ट स्थान होंगे। अब यहां हम रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो नो। अश्विन भाई
नमो